नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मतलब गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं।
हाँ जी।
हमारे पास हैं पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का एक उद्बोधन।
जी।
शीर्षक है गायत्री उपासना की सफलता के आधारभूत तथ्य, और ये उन्होंने आम भारतीय नागरिक को ध्यान में रखकर कहा था।
बिल्कुल, एवरेज व्यक्ति के लिए।
तो आज हम कोशिश करेंगे कि गुरुदेव ने जो मूल तत्व बताए हैं उनको समझें।
हाँ, जो उनके हिसाब से गायत्री उपासना को सफल बनाते हैं।
और ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये उनके अपने जीवन के अनुभव का निचोड़ है ना।
सही बात है, अनुभव का सार।
तो चलिए इस विश्लेषण में उतरते हैं।
शुरू करते हैं।
पूज्य गुरुदेव सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी आधार बताते हैं श्रद्धा।
श्रद्धा, विश्वास।
हाँ, श्रद्धा। वो कहते हैं कि चाहे फायदा हो, नुकसान हो, सफलता मिले या ना मिले,
हर हाल में
अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। वही उपासना की नींव है। उन्होंने एक माँ का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया।
जी।
जैसे माँ प्यार भी करती है।
हाँ।
और जरूरत पड़ने पर मान लीजिए बच्चे को फोड़ा हो गया।
हाँ।
तो उसका ऑपरेशन भी करवाती है।
बिल्कुल, बच्चे के भले के लिए ही।
दोनों में उसका हित ही छुपा है, तो श्रद्धा भी ऐसी ही होनी चाहिए, अविचल, परिस्थिति कोई भी हो।
बिल्कुल सही। और ये श्रद्धा कितनी ताकतवर हो सकती है, इसके लिए पूज्य गुरुदेव मीरा का उदाहरण देते हैं।
हाँ, मीरा भाई।
और रामकृष्ण परमहंस का भी। वो कहते हैं कि ये मीरा की अटूट श्रद्धा ही थी जिसने पत्थर की मूरत में गिरिधर गोपाल को जीवंत कर दिया।
अच्छा।
और वैसे ही रामकृष्ण परमहंस का जो विश्वास था, उसने पत्थर के टुकड़े को माँ काली का रूप दे दिया।
तो मतलब श्रद्धा में इतनी शक्ति है।
हाँ, गुरुदेव यही कह रहे हैं कि श्रद्धा में इतनी शक्ति है कि वो व्यक्ति के लिए उसके इष्ट का रूप एक तरह से खड़ा कर सकती है।
कमाल है।
वो इसे दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं, खासकर अध्यात्म के रास्ते पर।
उन्होंने तो खुद अपने गुरु पर जो अटूट श्रद्धा रखी, उसी से अपनी साधना को परिपक्व किया।
तो ये हुई श्रद्धा की बात।
ये तो हो गई नींव।
जी।
लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि भाई इस नींव पर इमारत खड़ी करनी है तो दूसरा तत्व भी मजबूत होना चाहिए,
और वो है
चरित्र।
चरित्र, बिल्कुल।
और इसे समझाने के लिए वो कपड़े रंगने का उदाहरण देते हैं।
हाँ, बड़ा सटीक उदाहरण है
कि जैसे मैले कपड़े पर कितना भी बढ़िया रंग डालो वो चढ़ेगा नहीं।
सही बात है, पहले धुलाई जरूरी है।
वैसे ही अगर मन मैला है, चरित्र में कहीं खूट है, तो फिर उपासना या मंत्र जाप का वो असर नहीं होता जो होना चाहिए।
बिल्कुल, ईश्वर का वास मैले मन में कैसे होगा।
इसी बात को और साफ करने के लिए उन्होंने राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ का किस्सा सुनाया।
हाँ, संतान प्राप्ति के लिए जो यज्ञ था।
गुरु वशिष्ठ तो खुद महान ऋषि थे, यज्ञ करा सकते थे।
जी।
पर उन्होंने कहा कि भाई अब मेरे मंत्र उतने प्रभावी शायद ना हो, क्योंकि गृहस्थ जीवन में हूँ, 100 पुत्रों का पिता हूँ।
अच्छा।
तो मेरा ब्रह्मचर्य, वो जो एक अखंड ऊर्जा होती है, वो वैसा अक्षुण्ण नहीं रहा।
इसलिए उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया।
हाँ, जिनका चरित्र और ब्रह्मचर्य बिल्कुल अक्षुण्य था।
तो ये कहानी सीधे सीधे जोड़ती है चरित्र की पवित्रता को मंत्र की शक्ति से।
हाँ।
मतलब चरित्रवान व्यक्ति की वाणी में ही वो ताकत आती है जो मंत्र को सिद्ध करती है।
अच्छा।
पूज्य गुरुदेव साफ कहते हैं कि भगवान या कोई भी दिव्य शक्ति वो किसी दुष्ट या बुरे आचरण वाले व्यक्ति के सिर्फ कर्म कांड करने से बहलाने में नहीं आती।
मतलब सिर्फ पूजा पाठ काफी नहीं है।
बिल्कुल नहीं, चरित्र की शुद्धि तो चाहिए ही चाहिए। जैसे धोबी कपड़े को पीट पीट कर साफ करता है ना।
हाँ।
वैसे ही अपने अंदर के मैल को निकालना पड़ता है। और एक मजेदार बात वो कहते हैं।
क्या?
कि पूजा की विधि में, मतलब रिचुअल में, कोई गलती हो जाए तो उतनी चिंता की बात नहीं है।
अच्छा।
जितनी चिंता श्रद्धा और चरित्र की दृढ़ता की है,
वो मजबूत होने चाहिए।
हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है।
उन्होंने वाल्मीकि का उदाहरण दिया, उनको तो राम नाम उल्टा जपना पड़ा, मरा मरा।
हाँ, सुना है।
और अफ्रीका के कुछ लोगों का भी जिक्र किया जिन्हें शायद मंत्र ठीक से बोलना भी नहीं आता था,
लेकिन श्रद्धा थी।
पर उनकी श्रद्धा प्रबल थी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण था।
तो श्रद्धा हो गई, चरित्र हो गया, इसके बाद गुरुदेव एक तीसरी बहुत जरूरी बात पर आते हैं।
जी।
वो है उच्च उद्देश्य।
उच्च उद्देश्य, नोबल एम।
हाँ।
कि भाई उपासना किसी छोटे मोटे लालच के लिए या किसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए या किसी गलत काम के लिए तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भगवान से सिर्फ मांगते ही नहीं रहना है, बल्कि उन्हें अपने जीवन में एक तरह से साझेदार बनाना है।
पार्टनर।
पार्टनर। और वो कहते हैं कि ये जो फोकट में कुछ पाने की इच्छा होती है ना।
हाँ, बिना कुछ किए,
बिना कीमत चुकाए, ये एक तरह की दीनता है, अपने आत्मसम्मान के भी खिलाफ है।
सही बात है, हर चीज की कीमत तो होती है।
बिल्कुल।
और अध्यात्म के क्षेत्र में गुरुदेव के अनुसार ये कीमत है कृपणता का त्याग।
कृपणता मतलब कंजूसी।
हाँ, पर सिर्फ पैसे की कंजूसी नहीं, बल्कि अपने समय की, अपने ज्ञान की, अपनी प्रतिभा की।
अच्छा।
इन सबको परमार्थ में, दूसरों की भलाई में लगाने से कतराना ये भी कृपणता है।
समझ गई।
और उदारता से सेवा के काम में जुटना, पूज्य गुरुदेव ने तो खुद अपना पूरा जीवन, तन मन धन सब कुछ अपने गुरु के बताए रास्ते पर और समाज की सेवा में लगा दिया।
हाँ, ये तो हम जानते।
और वो कहते थे कि बदले में उन्हें उससे कहीं ज्यादा मिला, आत्मिक शक्ति, संतोष, वो सब मिला। उनका एक बड़ा स्पष्ट संदेश था कि आज के युग की, मतलब हमारे समय की, सबसे बड़ी जरूरत है विचार क्रांति।
विचार क्रांति मतलब?
लोगों की सोच को सही दिशा देना, उनकी अकल ठीक करना, जैसा वो कहते थे।
अच्छा।
और इसके लिए ज्ञान यज्ञ का विस्तार करना, घर घर जाकर अच्छे विचारों का, नवयुग का संदेश देना, लोगों को ये कृपणता छोड़कर उदारता और सेवा की तरफ लाना, यही सच्ची उपासना है उनके अनुसार।
तो मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं जीना।
बिल्कुल। तो जब कोई व्यक्ति इन तीन चीजों को, अटूट श्रद्धा, निर्मल चरित्र और सेवा का ये उच्च उद्देश्य, खासकर लोगों की सोच को बेहतर बनाने का उद्देश्य, जब इनको जीवन में उतार लेता है, तभी उसे गायत्री उपासना का या किसी भी साधना का वो असली फल मिल सकता है, वो अनुभव हो सकता है जो हमारे ऋषियों को हुआ।
सिर्फ सोचना नहीं, करना भी है।
हाँ, विचारों को एक्शन में बदलना बहुत जरूरी है।
तो अगर हम सार निकालें, पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के अनुसार गायत्री उपासना की सफलता के तीन मजबूत पाए हैं।
जी, तीन स्तंभ।
पहला, ईश्वर और गुरु में अटूट श्रद्धा।
दूसरा,
पवित्र साफ सुथरा चरित्र,
निर्मल चरित्र।
और तीसरा, छोटे मोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर परमार्थ और समाज सेवा का एक महान उद्देश्य रखना।
बिल्कुल, यही तीन आधार हैं।
इस पूरी बातचीत से एक सवाल समझ में आ रहा है।
हाँ, कहिए।
कि ये जो तीन बातें हैं, श्रद्धा, चरित्र और सेवा,
हाँ,
क्या ये सिर्फ पूजा पाठ या जो हम औपचारिक उपासना करते हैं, बस वहीं तक सीमित है?
अच्छा सवाल है।
या फिर क्या जीवन के हर काम में, अपने रिश्तों में, अपने फैसलों में, हर जगह इनको लागू करके कोई भी व्यक्ति अपने आज को और आने वाले कल को ज्यादा बेहतर, ज्यादा उज्जवल बना सकता है?
ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या ये सिद्धांत जीवन जीने का एक तरीका भी हो सकता है? इस पर विचार किया जा सकता है।